नहीं है अपने को आगे बाकी समझते चुके हैं अपन एक आउट में है फिर से रिव्यू रिवाइज करना हो तो वो सीधा है पहले घर से कहाँ जाएंगे तो पहले से चौथे में जाएंगे या पहले से पाँचवें में जा सकते हैं या पहले से सात में जा सकते हैं चौथे से पाँचवें में जा सकते हैं चौथे से डायरेक्ट सात में जा सकते हैं जब भी कोई छठवें में जाएगा तो सातवें से नीचे आएगा तभी जाएगा है ना कोई भी डायरेक्ट छठवें में नहीं जाना छठवें में सातवें से नीचे आकर के जाना फिर चौथे से दूसरे तीसरे का भी इसी प्रकार है कि कोई अगर चौथे में पहुंच गया है या पाँचवें में पहुंच गया या सातवें में पहुंच गया वो वहां से अगर गिरता है तो वो तीसरे में भी आ सकता है दूसरे में आ सकता है और फिर पहले में आ सकता है तो ये इस तरह से और अगर एक बार उसने हिम्मत करके और वो निकल गया श्रेणी चढ़ गया तो सातवें से आगे चढ़ा है तो अगर वो अपनी कषाय को दबा करके चढ़ा है तो क्रम से जाएगा आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह में जाएगा और फिर वहाँ पर नीचे आएगा क्रम से दस नौ आठ सात अगर इसमें उस गड़बड़ हो गई उसके तो वो सीधा पहले में भी जा सकता है और दूसरा जो है हिम्मत करके आगे बढ़ता है सातवें से तो वो अपने कषायों को नष्ट करके चढ़ता है तो फिर आठ नौ दस और सीधा बारह में और बारह में चार कर्मों को नष्ट करके और सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा जब तक वो मन वचन काय की क्रिया होती रहेगी तब तक तेरहवां गुरु स्थान सहयोग केवली कहलाएंगे फिर योग का निरोध कर देंगे तो चौदहवां गुरु स्थान अयोग केवली और फिर आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध होंगे ये एक गुण स्थान की सीधी सी प्रक्रिया है मोह और योग के माध्यम से होने वाले जीवों के भावों के उतार चढ़ाव का नाम गुण स्थान है भाव अनंत है लेकिन हमने उनको चौदह श्रेणी में डिवाइड कर दिया इसलिए जो है चौदह गुण स्थान हो गए ये बहुत सिंपल सी इतनी अपने आउटलाइन दिमाग में रहनी चाहिए तो जो है उनका वो सब लिख रहे थे वो थोड़ा सा और लिख लीजिएगा आज का अविरत का अर्थ है मतलब जिसने कोई संकल्प पूर्वक विरत नहीं लिया विरत मतलब विरत मतलब पांच पापों से विरति विरक्ति हो जाना विरतिर्व्रतम व्रत को ही विरत बोलते हैं अपन अपनी भाषा में व्रत को क्या बोलते हैं विरत करे तो विरत मतलब विरक्त विरत का मतलब विरक्त निवृत्ति हाँ निवृत्त हो गए सब काम से
निवृत्त हो गए नहीं सब काम से हम
निपट गए वही तो विरत हो गए मतलब हम उससे विरक्त हो गए सीधा लिखिए विरत मतलब विरक्त होना अविरत मतलब अभी विरक्त नहीं हुआ है पापों से लेकिन पाप करता भी नहीं है पर संकल्प नहीं लिया है कि मैं पाप नहीं करूँगा तो जब पाप के त्याग का संकल्प ले लेता है तब वो विरति कहलाता है और नहीं लेता है तो अविरति कहलाता है ऐसा तो उसमें लिखा था अपन ने अविरत सम्यक दृष्टि है क्यों है क्योंकि उसने व्रत नियम के पालन का संकल्प नहीं लिया इसलिए सम्यक दृष्टि होते हुए भी अविरत सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं ये प्रक्रिया कल अपन ने ये लिखा था कि शायद सम्यक दर्शन यदि हो जाता है चौथे गुण स्थान में तो फिर वो नीचे नहीं गिरता है ना और शेष दो जो सम्यक दृष्टि हैं वो अपना काल पूरा होने पर या कि परिणामों की निर्मलता खत्म होने पर नीचे गिरते हैं अब अपन लिखें नीचे गिर जाते हैं यहाँ तक लिख लिया इस तरह दूसरा और तीसरा गुण स्थान गिरने की अपेक्षा होता है इस तरह ऐसा लिखें इस तरह गिरकर दूसरा व तीसरा गुण स्थान प्राप्त करते हैं जी प्राप्त करता है इस तरह दूसरा और तीसरा इस तरह गिरकर दूसरा और तीसरा गुण स्थान यह जी प्राप्त करता है ये दोनों गुण स्थान लिखा इस तरह गिरकर दूसरा और तीसरा गुण स्थान यह जीव प्राप्त करता है यह दोनों गुण स्थान गिरने की अपेक्षा बनते हैं नहीं पहले से चौथे में ये इसमें विशेष पहले से चौथे में जाएगा फिर नीचे गए दूसरा सासादन गुण स्थान जिसमें कषाय के उदय से जीव सम्यक दर्शन की आसाधना अर्थात अनादर करता है। अनादर आसाधन मतलब अनादर, सा साधन मतलब आसाधन सहित, तो आसाधन मतलब क्या हुआ? अनादर। उसने सम्यक दर्शन की अनादर कर दिया, इसलिए क्या लिखा?
जिसने कषाय के उदय से जीव सम्यक दर्शन की आसाधना
अनादर करता है। इस गुण स्थान में अत्यंत अल्पकाल ठहर कर प्रथम गुण स्थान में आ जाता है। इस गुण स्थान में अत्यंत अल्पकाल ठहर कर प्रथम गुण स्थान में आ जाता है। ये दूसरे गुण स्थान के बारे में क्लियर हो गया कि गिर करके दूसरे गुण स्थान में आता है तो क्या वजह है? कषाय के उदय में सम्यक दर्शन की आसाधना अर्थात अनादर करता है, इसलिए आता है दूसरे गुण स्थान में। यहाँ अल्पकाल ठहर कर नियम से पहले गुण स्थान में जाएगा कि जैसे बीच में लटक गए हैं, जमीन पे नहीं आ पाए, पर आकाश से तो गिर गए और फिर नीचे आएंगे जरूर से, ऐसा। तीसरा सम्यक विख्यात गुण स्थान है जिसमें जीव के, तीसरा सम्यक विख्यात गुण स्थान है जिसमें जीव के श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों की मिली जुली दशा होती है। तीसरा सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान है जिसमें जीव के श्रद्धा व अश्रद्धा दोनों की मिली जुली अवस्था होती है, इसे मिश्र गुण स्थान भी कहते हैं। मैं इनकी परिभाषाएं वैसे ही लिखवा रहा हूं कि इस प्रकृति के उदय में और इस प्रकृति की क्षय से, इसके क्षय उपशम से, नहीं तो कठिन पड़ेगा शुरुआत में, इसलिए इतना ही समझो। इनकी कहीं पर पढ़ने मिल जाएंगी परिभाषाएं तो वो परिभाषाएं भी पढ़ सकते हैं, वो बाद में। अभी सामान्य रूप से कि श्रद्धा अश्रद्धा दोनों की मिली जुली अवस्था है, इसको मिश्र गुण स्थान कहते हैं। इस तरह ये चार गुण स्थान दर्शन मोहिनी कर्म से प्रभावित गुण स्थान है। इस तरह ये चार गुण स्थान दर्शन मोहिनी कर्म से प्रभावित गुण स्थान है। क्यों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या बोलूं? इस तरह मतलब अभी तक अपन ने कितने गुण स्थान की चर्चा लिखी? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चार लिखे ना इस तरह, इसलिए तो लिखवा है कि इस तरह ये चार गुण स्थान अर्थात पहले से चौथा, ऐसा लिख लो फर्स्ट टू फोर्थ। इस तरह ये चार गुण स्थान फर्स्ट टू फोर्थ दर्शन मोहिनी कर्म से प्रभावित गुण स्थान है। इन चारों में जीव असयनी होता है। इन चारों दशाओं में जीव असयनी रहता है। अब जो है वो पांचवा गुण स्थान नंबर फाइव। हाँ, इस पांचवा गुण स्थान देश विरत या संयता संयत, देश विरत संयता संयत, संयत भी और असंयत भी, तो संयता संयत गुण स्थान कहलाता है। यह देश विरत या संयता संयत गुण स्थान कहलाता है। इसको विरता विरत भी बोलते हैं, दोनों कई तीन टर्म्स हैं इसके लिए, पर विशेष, हाँ, पर विशेष रूप से संयता संयत गुण स्थान चलता है। यह देश सम्यक दृष्टि जीव जब यथा योग आंशिक रूप से, सम्यक दृष्टि जीव जब यथा योग आंशिक रूप से पांच व्रतों को ग्रहण कर लेता है और अनुवृत्ति हो जाता है तब उसे संयता संयत कहते हैं। या अब मान लो जो पहले गुण स्थान से आया पांचवे में, तो ये तो चौथे से पांचवे में आया इसलिए समय दृष्टि था, या श्रद्धा सहित, सीधा श्रद्धा सहित अनुव्रत को ग्रहण करने वाला संयता संयत कहलाता है। सीधा सीधा उसने पूरी श्रद्धा के साथ अनुव्रत ग्रहण कर लिया, डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि था पहले गुण स्थान में तो डायरेक्ट कर लिया, तो उसके लिए पांचवा हो जाएगा पहले। अथवा क्या लिखा,
श्रद्धा सहित
अनुव्रत
को ग्रहण करने वाला संयता संयत
कहलाता है। अथवा मैं लिख लिया ऐसा जीव त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त होने के कारण संयत है। ऐसा जीव त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त होने के कारण संयत है, लेकिन ऐसा जीव त्रस्तीवों की हिंसा से विरक्त होने के कारण संयत है, लेकिन स्थावर जीव राशि के घात से नहीं बच पाने के कारण असंयत भी है। लेकिन स्थावर जीव राशि के घात से नहीं बच पाने के कारण असंयत भी है। इसलिए इसे संयता संयत ऐसा नाम दिया गया है, इसलिए इसे संयता संयत ऐसा नाम दिया गया है। श्रद्धा सहित अब नंबर सिक्स, नंबर सेवन अपन उसी तरह लिख रहे हैं जैसे चढ़ते हैं सेवन। श्रद्धा सहित जब श्रद्धा सहित जीव महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है, श्रद्धा सहित जब यह जीव महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है, और प्रमाद रहित होकर आत्मा में विचरण करता है, तब अप्रमत्त संयत नाम का सातवां गुण स्थान होता है। तब उसे अप्रमत्त संयत नाम का सातवां गुण स्थान यहाँ अत्यंत अल्प काल रहकर जब प्रमाद सहित होकर नीचे आता है, यहाँ जब अत्यंत अल्प काल रहकर प्रमाद सहित होकर जितने समय प्रमाद में रहेगा उससे जितना अप्रमत्त रहेगा उससे दूना प्रमाद में रहेगा, फिर अप्रमत्त होगा। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने का भाव आया प्रमाद, मैं बोला प्रमाद, लेकिन सावधानी रखी कि अनर्गल ना हो जाए अप्रमाद, फिर बोल लिया फिर प्रमाद, फिर अप्रमाद, फिर प्रमाद, इस तरह से दर्शन की प्राप्ति के बाद क्या लिख लिया, अत्यंत अल्प काल रहकर प्रमाद सहित होकर जब नीचे आता है तब उसे प्रमत्त संयत नामक छठा गुण स्थान होता है। अब यहाँ पर सिक्स नंबर डालने, तब उसे प्रमत्त संयत नामक छठा, संयत है लेकिन असावधान है ऐसा, अप्रमत्त संयत नामक छठा व्यवस्थान होता है। महाव्रती बीतरागी साधु के यह छठा सातवां व्यवस्थान अनेकों बार होता रहता है। महाव्रती बीतरागी साधु के यह छठा सातवां व्यवस्थान अनेकों बार असंख्यात है, वैसे अनेकों बार लिखवा रहा हूँ, अनेकों बार होता रहता है। बस और लिखे सातवें स्थान तक हो गया। व्रत ले ले थोड़े मिनट तो पांचवा और नहीं तो चौथा स्थान, बिना व्रत के चौथा स्थान, सम्यक दर्शन के साथ चौथा वो स्थान, सच्ची श्रद्धा होने के लिए सत्य देव
शब्द के समय दर्शन कम हो पाता होगा
क्यों? पशु के हो जाता है आप तो बात कर रहे हैं, नारकी जीवों के होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन व्रत नियम संयम होना कठिन होता है। इतने ही महाव्रती हो सकता तो मनुष्य हो सकता, बस एक जगह है। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, चारों गति के पशु भी हो सकता, पशु अनुव्रति भी होता है, देश व्रत ले लेता है, पानी फूंक करके पीता, छन्ना उसका वही है, हरी पत्ती नहीं खाता, सूखी पत्ती खाने लगता है जब वो व्रत ले लेता है। इस काल में भी हैं पशु होते हैं, उदाहरण हाथी में संलेखन,
हाथी संलेखन वो तो यूनिक लेकर
है, हाथी के संलेखन वाला उदाहरण इसी का। बस आगे के फिर सात गुण स्थान और लिखना है क्या? वो थोड़े कठिन है, लिखो अप्रमत्त संयत नंबर एट। एट के पहले अपन थोड़ा सा लिख लें कि सातवें के बारे में डिटेल, थोड़ा सा एक पैराग्राफ छोड़, एक पैरा बना करके। अप्रमत्त संयत के दो भेद हैं, अप्रमत्त संयत यानी सातवें गुण स्थान में भी दो भेद को डिफाइन करें तो दो भेद, एक स्वस्थान अप्रमत्त, स्वस्थान अप्रमत्त, और दूसरा नंबर टू सातिशय अप्रमत्त,
सातिशय
अप्रमत्त। वीतरागी संयत प्रमाद रहित अविचल अवस्था को प्राप्त होना स्वस्थान अप्रमत्त है।
वीतरागी प्रमाद रहित,
वीतरागी संयत, संयत शब्द लगाओ क्योंकि संयत तो है ही वो, वीतरागी संयत प्रमाद रहित अविचल अवस्था को प्राप्त होना स्वस्थान अप्रमत्त है। इस दशा को प्राप्त होता है जब जीव, तो उसको कहेंगे स्वस्थान अप्रमत्त, और फिर
अविचल अवस्था को प्राप्त होना
स्वस्थान अप्रमत्त है। अभी नए शब्द तथा भावों की अत्यंत निर्मलता के द्वारा, भावों की अत्यंत निर्मलता के द्वारा जब अप्रमत्त संयत जीव मोह कर्म का सर्वथा उपशम या क्षय करने के लिए, अप्रमत्त संयत जीव मोह कर्म का सर्वथा उपशम या क्षय करने के लिए तत्पर हो जाता है, तब उसे सातिशय अप्रमत्त संयत कहते हैं। तब उसे सातिशय अप्रमत्त संयत कहते हैं। इतना फर्क हो गया, एक अपनी जगह पे है फिर वो छठे में आएगा, इसलिए उसको स्वस्थान अप्रमत्त कहते हैं। और जब उसने मेहनत करके और तत्पर हो गया कि अब तो आगे बढ़ेंगे, तब वो सातिशय अप्रमत्त है, तत्पर हो जाता है, तब उसे सातिशय अप्रमत्त संयत कहते हैं। सातिशय वाला फिर छह दिन पर चढ़ेगा, ये आज संभव नहीं, आज स्वस्थान अप्रमत्त तक है।
इसको समझा
समझाने का तो यही है, जैसे कि आप उदाहरण ले लें, कि जब महाव्रत ले लिया सम्यक दर्शन के साथ और ये हम सबको समझा रहे हैं, अपना आहार भी कर रहे हैं, 28 निर्गुण का पालन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि प्रमाद भी है और अलर्टनेस सावधानी है, इसलिए अप्रमाद भी है, लेकिन जब ध्यान में लीन हो गए, अब ध्यान में लीन है, फिर आत्मा में लीनता जब थोड़ी हटती है तो छठा होता है, आत्मा में लीनता होती तो सातवां हो जाता है। तो इस तरह से ये जो ध्यान में लीनता का गुण स्थान है वो स्वस्थान अप्रमाद, जिसमें हम छठवें में भी आते हैं फिर साथ में चले जाते, फिर छठ में आते फिर साथ में चले जाते, लेकिन एक मुनि महाराज जी ऐसे होते हैं जो कि ध्यान में लीन हो गए और आत्मा में ही स्थिर हो गए, फिर नीचे नहीं आए और अब ऊपर ही ऊपर चढ़ेंगे, उनको कहेंगे सातिशय अप्रमत्त हैं, तो सातवें गुण स्थान में, लेकिन अब वो अपने में स्थिर होने की प्रक्रिया में हैं, आगे जो है वो अपने मुनि कर्म को तीन करण करके, परिणामों की निर्मलता का नाम करण, तो वो करण परिणाम करके और फिर हाँ आठवें नौवें दसवें में जाएंगे, ये इतना फर्क हो जाता है। हाँ ये मतलब दो डिवाइडेशन, एक ही मुनि महाराज जी थे, अभी जो है अपने सब 28 मुर्गुण का पालन भी कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए ध्यान में लीन हो जाते फिर बाहर आ जाते फिर, लेकिन एक बार ऐसा किया उन्होंने कि लीन हुए तो बस लीन ही हो गए, अब आगे बढ़ेंगे, तो जंपिंग बोर्ड पर खड़े हो गए जंप करने के लिए आगे, तो वो कहलाएंगे सातिशय, अब नीचे नहीं आए। जंपिंग बोर्ड है श्रेणी में चढ़ने के लिए, उसमें कोशिश करता है फिर थोड़ा हिम्मत करता फिर ऊपर पहुंच जाता फिर नीचे आ जाता फिर ऊपर, और एक बार हिम्मत करके ऊपर पहुंच जाता, ये मान लीजिएगा इस तरह से। अब जो है एक और लिख लें, अच्छा ये इतना और लिख लें थोड़ा सा, मोह का उपशम या क्षय करने वाला जीव, मोह का उपशम या क्षय करने वाला जीव क्रमशः उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ता है, मोह का उपशम या क्षय करने वाला जीव क्रमशः उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ता है, उसे क्रमशः उपशम या क्षपक कहते हैं। क्षय करने वाला जीव क्रमशः उपशम उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ता है, तब उसे क्रमशः उपशामक या क्षपक कहते हैं। उपशम श्रेणी चढ़े तो उपशम करने वाला होगा उसे कहेंगे उपशामक, क्षपक श्रेणी चढ़े क्षय करने वाला होगा उसे कहेंगे क्षपक। एक तरह से अपने आधा काम तो हो गया, अभी तो इस तो इतने ही स्थान रहेंगे इस काल में, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, साथ ही शायद प्रमुख कोई नहीं हो सकता, इससे नीचे गिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर चाहिए सातिशय अप्रमत्त के लिए, वज्र वृषभ नाराज से नहीं चाहिए सातिशय अप्रमत्त, कहने में तो बहुत सरल है कि आत्मा में लीन हो गए कि नीचे आई नहीं, लेकिन कौन नहीं आएगा जो कि वज्र वृषभ नाराज शरीर में इस सामर्थ्य में। सुबह से संकल्पित होंगे, दिन भर हम उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करेंगे और शाम होते ही फिर सब भगवान के दिल में सौंप करके निश्चिंत होकर कल की तैयारी करेंगे, क्या हो गया, सुबह संकल्प करूं कि मैं फंसूंगा नहीं, वास्तविकता को जैसी है वैसा लूंगा, और दिन भर उससे उसको निरंतर स्मरण में रखें और शाम को जितना कर पाएँ उसको समर्पित कर दें। तो संकल्प साधना और समर्पण ये कोई भी एक प्रक्रिया तो समर्पण, ये तीन शब्द हैं, इनको पूरे जीवन में अगर हम रेगुलेट करें तब तो संभव है, वरना नहीं होगा। तो बहुत विरले लोगों के लिए लिखा हुआ है कि जानते ही जिनते जी, ये जीव जानता भी है विचार भी करता है कि यहाँ सिवाय पीड़ा के मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन विशेष न विरत जाइए, लेकिन विषयों से विरक्त नहीं हो पाता, वही आप करें डिटैच नहीं। तो क्या कहते हैं आचार्य के, अहो आश्चर्य है,
ये माया की मोह की ग्रंथी बहुत सुदृढ़ है, ये आदमी अपने हाथ से लगाता है और फिर खोल लेता है। जैसे रेशम के धागे में गांठ बांध दी जाए, फिर खोल लेगा रेशम के धागे का भी गांठ, अपनी खुद की बांधी हमने, किसी और ने हमारे लिए बांधी, लेकिन प्रयास तो निरंतर करना पड़ेगा, नहीं होगी तो हमें तोड़ देना पड़ेगा।
महाराज जैन धर्म में ईश्वर की जो कल्पना है उसके हिसाब से अगर वो वेदराग है, निष्प्रह है, उसको ये भी आकांक्षा नहीं है कि मैं अपने मत का प्रचार करूँ, अपने और भक्त बनाऊँ, तो वो ईश्वर हमें संकट के समय में किस प्रकार हमारी मदद कर
सकते हैं?
जैसे हम वैष्णव धर्म में कुछ आश्वासन पाते हैं कि द्रौपदी का भगवान ने जीव बढ़ाया, दर्श को ग्रह से बचाया, तो उस तरह से हमारे धर्म में जिस समय हम संकट में फंसे हों संसार की, उस समय हम क्या सोचें और किससे आशा करें?
यही जिसको मन समर्पण कह रहे हैं कि सुबह मैंने संकल्प लिया था कि मैं ऐसा करूंगा, दिन भर मैंने संकल्प को पूरा करने का उद्यम भी किया, मेरे से पूरा नहीं बन पाया, अब तुम जानो मैंने छोड़ा, अच्छा हुआ तो तुम्हारा, बुरा हुआ तो भी तुम्हारा, मैं छोड़ता हूँ, मैं निश्चिंत होकर के अब कल के इंतजार में आज समाप्त पूरा। ये समर्पण को चाहे हम ये कह लें, जब भक्त की भाषा में कहेंगे तो वो कहेगा कि परमात्मा करता है, और अगर ज्ञानी की भाषा में करेंगे तो मैं जैसा करता हूँ वैसा मुझे रिटर्न मिलता है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिटर्न। तो ईश्वर की अवधारणा हमारे यहाँ पर उसको कर्ता के रूप में मान करके नहीं हुई, इतना ही फर्क देने से हमने ईश्वर को माना जो कि सुप्रीम है, लेकिन वो सब पूरी सृष्टि को रेगुलाइज नहीं करता है, रेगुलेट नहीं करता, वो सबको जानता देखता तो है लेकिन सबका हिसाब नहीं मिलाता है, नहीं तो वो तो बहुत आकुल विकल होगा, एक फैमिली हम चलाते हैं तो इतने आकुल विकल होते हैं, वो पूरे उसको चलाएगा तो किस तरह से करेगा वो, और किसी को सुख देना किसी को दुख देना, ये काय को उपद्रव पड़ेगा।
तो जो हम संकट के क्षणों में भी ईश्वर को पुकारते हैं तो और फिर भी उनका संकट नहीं जाता तो क्या समझ,
हमारे डिवोशन की कमी, यही कहना है हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं तो कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो कि हमसे भारी हो जाए, क्योंकि संकट लाने वाले हमारे अपने कर्म हैं और क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर, कभी भी कोई भी क्रिएशन जो है वो क्रिएटर से बड़ा नहीं होता, मैं उसका प्रतिकार हूँ, मेरे कर्मों का श्रष्टा मैं हूँ, मैंने अपने कर्म बनाए हैं, वो मेरे से बड़े नहीं हो सकते, मुझे इतना अधिक पीड़ित नहीं कर सकते कि मैं नष्ट हो जाऊँ, इसलिए धैर्य धारण करूँ, उनका फ्लो जो है वो निकल जाने का, पीड़ा में भी मैं शांत रहूँ, समर्पित कर दूँ, जो होता है सब स्वीकार करूँ।
तो हमारे कर्मों का हिसाब रखता कौन है,
हमें
किस हिसाब से,
एक ब्लूप्रिंट हमारे भीतर खुद बनता है, बिल्ट इन प्रोग्राम, पूरा हमको क्या करना है हम खुद ही अपने साथ लेके चलते हैं पूरा,
तो फिर हम अपना बुरा क्यों चाहेंगे,
नहीं चाहते हुए भी करते तो हम अपना बुरा ही,
जिस तरह क्रोध
नहीं चाहते हुए भी हम अपना करते तो बुरा है, हम चाहते हैं अच्छा लेकिन करते हैं बुरा।
जैसे जान के आदमी मदिरा पान करे, जान के धूम्रपान करे, तो मालूम है उसे
बहुत छोटी सी चीज़ क्रोध में जानते हैं, लेकिन
हम एक तो मूवमेंट जानते हैं कि बात बिगड़ेगी फिर भी नहीं झूकते हैं कड़ी बात कहने से, जबकि हम जानते हैं कि बात तो बिगड़ जाएगी और मेरे अंदर एक संस्कार डिपॉजिट हो जाएगा, कल फिर मैं कड़ी बात करने के लिए मजबूर हो जाऊँ, आज कर रहा हूँ तो अपने संस्कार, तो संस्कारों को हम खुद डालते हैं और पूरा जैन धर्म हम संस्कारों को तोड़ने का धर्म है
जी,
अपने संस्कारों को हम तोड़ें
पहले
हटाएं, मैं उनको डाइवर्ट करें, बुरे संस्कारों को अच्छे में डाइवर्ट करें, फिर अच्छे बुरे सब संस्कारों से परे हो जाएं, कर्मातीत हो जाएं, वो स्थिति, हमने कर्म को संस्कार माना, जो हम करते हैं वो हमारे साथ डिपॉजिट है, हमारे भीतर अटैच हो जाता है, जैसे हमने कोई काम किया एक लाइन खींच गई तो उसी तरह से हम खुद एक लाइन खींच देते हैं, जैसे एक उदाहरण दिया है कि पानी यहाँ से बहा फिर सूख गया, अब वो एक सूखने के बाद भी एक लाइन बन गई, अब जब पानी गिरेगा तो उसी के अलावा पहले जाएगा, इसी तरह हमारे भीतर एक बार क्रोध का संस्कार पड़ता है फिर अगली बार कोई मौका आता है तो फिर उसी के अलावा फिर हम क्रोध कर बैठते हैं फिर कर बैठते हैं, और इस तरह निरंतर एक संस्कार बहुत प्रगाढ़ होता है, फिर आदमी मजबूर हो जाता है नहीं चाहते हुए भी छोटी छोटी बात में और क्रोध करना शुरू, तो कहते हैं इसको जीत, इसलिए हमने जिन रखा हुआ, जीतने वाले को हमने भगवान बनाया कि जो अपने वाणी और मन को जीत ले, इंद्रियों को जीत, ईश्वर की कल्पना हमारे यहाँ उसी की है कि जो अपने को जीत ले वो ईश्वर, हर आत्मा ईश्वर बन अपने को जीत कर। ऐसा भी कह सकते हो
वर्तमान में समर्पण पूरा रखेंगे तो संकट नहीं आएगा, संकट से बच जाएंगे,
हम जितना झेल लेंगे उतना निश्चिंत हो जाएंगे, जितना हम आज झेल लेंगे उसमें कल के लिए हम फ्री हो जाएंगे। अभी मैंने एक देखा था आप कविता के लेके आ रहे थे, इसको नहीं पूछना
उसे अभी खोलना में सारा समय लगेगा।
अब तुम पहले की तरह कहीं ठीक से झुक नहीं पाते, अब तुम पहले की तरह कहीं ठीक से झुक नहीं पाते, इसीलिए तो कहीं रुक नहीं पाते। अब तुम पहले की तरह कहीं ठीक से झुक नहीं पाते, इसलिए तो कहीं रुक नहीं पाते, निरंतर आगे बढ़ने की अकड़ में थक कर चूर हो जाते हो, तब किसी से कह भी नहीं पाते कि तुम थक गए। निरंतर आगे बढ़ने की अकड़ में जब थक कर चूर हो जाते हो, तब किसी से कह भी नहीं पाते कि तुम थक गए हो। सचमुच अब तो तुम पहले से भी ज्यादा असहाय हो गए। तुम सोचते थे कि झुकूंगा तो असहाय हो जाऊंगा, लेकिन अब तो तुम पहले से भी ज्यादा असहाय। रोज लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, करने को कहने को रह गया। रोज लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, करने को कहने को रह गया हो, शायद दो दिन की जिंदगी में इसीलिए दूसरा दिन होता। सोच रहा था कि शायद इसलिए कोई बात नहीं, एक दिन और है कर लो।
वो पोयम भी है आपकी इस कविता, इसमें जो चिड़िया के ऊपर आपने लिखी है वो झाड़ पालोस।
अच्छा अच्छा,
वो बहुत प्यारा है। कहीं वो उड़ ना जाए चिड़िया, उड़ ना जाए।
मैं वहाँ था विदिशा में, तो वहाँ पर एक झाड़ फानूस वैसे लगाए जाते हैं, बहुत लगे थे। मैं पहले दिन वहाँ बैठा सामायिक करने, तो मुझे वो अच्छा तो लग रहा था, बहुत डर लग रहा था कि ये टूट कर गिर ना जाए, बहुत डेलिकेट था। एक चिड़िया आकर के बैठी उस पर, तो वो हिलने लगा, और सुंदर लग रहा था पर डर भी लग रहा था। मैंने उसी पर एक लिखा कि कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती है, कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती है, पर मन डरता है कि कहीं फानूस टूट कर गिर न जाए, कि कहीं चिड़िया होती दो में से तो कुछ होगा।
और एक आपकी कैसेट में वो सुनी, वो बदली ने मुझसे कहा, सागर ने मुझसे कहा, सीमा में लोग, वो भी बहुत प्यारी।
वो सब पुरानी कविता है, नहीं
है तो कोई नई सुनाइए आपको जो पसंद
है। ये मैंने अभी लिखा था, तो जब कभी कोई चिड़िया मेरे आसपास अपना घर बना देती है, जब कभी कोई चिड़िया अपने मेरे आसपास अपना घर बना देती है, तब मेरा मन, मैं बोलती हूँ कि तुम शब्द, जब भी कोई चिड़िया मेरे आसपास अपना घर बना देती है, मैं गहरे आत्मविश्वास से भर जाता हूँ, मैं गहरे आत्मविश्वास से भर जाता हूँ कि कोई तो है जो मेरे प्रति विश्वस्त है, कोई तो है जो मेरे प्रति विश्वस्त है, अब मुझे उसके विश्वास को निरंतर संबल दे, उसका विश्वास, जिस विश्वास से उसने बनाया है वो विश्वास टूटता है। तो ये आप जो कह रहे हैं वो एक उड़ते पखेरू ने मुझसे निरंतर उड़ते रहने को कहा, एक उड़ते पखेरू ने मुझसे निरंतर उड़ते रहने को कहा, एक पेड़ ने तूफानों के बीच अडिग खड़े रहने को कहा, एक पेड़ ने तूफानों के बीच अडिग खड़े रहने को कहा, और एक नदी मुझे निरंतर बहते रहने को कह गई, और एक नदी मुझे निरंतर बहते रहने को कह गई, सूरज ने सुबह आकर मुझसे दिन भर रोशनी देते रहने को कहा, सूरज ने सुबह आकर मुझसे दिन भर रोशनी देने को कहा, चांद सितारों ने रात भर अंधेरे से जूझने को कहा, और एक नीली झील मुझे बाहर भीतर एक साथ निर्मल होने को कह गई, और एक नीली झील मुझे बाहर भीतर एक साथ निर्मल होने को कह गई, सागर ने धीरे से लहरा कर कहा कि सीमाओं में, सागर ने धीरे से लहरा कर कहा कि सीमाओं में रहो, आकाश ने अपने में सबको समाकर कहा असीम हो, आकाश ने अपने में सबको समाकर कहा असीम हो, और एक नन्ही बदली प्रेम से भरकर मुझे बरसने को कह गई, और एक नन्ही बदली मुझे प्रेम से भरकर बरसने को कह गई, इस तरह मेरी जिंदगी सबकी हो गई।
समापन बड़ा क्या। आप कब लिखते हैं महाराज कविता ज्यादा?
अच्छा, कब लिखते हैं? हाँ। जब देखते हैं। कोई फिक्स टाइम क्योंकि मैं इस सब में व्यस्त रहता हूँ, उसमें से थोड़ा सा टाइम जब कोई भी
जब लिखने को मन होता है तो एक तरह की बेचैनी होती होगी कैसे लिख लें।
अभी तक नहीं हुआ,
भूल नहीं जाए कर
पहले होता था, अब नहीं होता, अब तो उसको पढ़ा रहने देता हूँ।
अच्छा।
हाँ पढ़ा रहने देता हूँ, 10 दिन के बाद अगर मेरा होगा निजी, कहीं से उधार पड़ा हुआ होगा तो हो सकता है उधार तो मेरा निजी होगा तो 10 दिन बाद भी आए। ऐसा एक बार हुआ कि मैं उधर जंगल जाया करता था जबलपुर में, तो उधर जाऊँ तो याद आ जाए कि वो वाली कविता है जो लिखना है, फिर जब यहाँ वापस लौट कर आऊँ तो भूल जाऊँ लिखना, तो भूल जाऊँ तो फिर बेचैन नहीं होता था कि नहीं आई तो नहीं आई, दूसरे दिन फिर वहीं पहुँचूँ तो फिर याद आ जाए। 4-5 दिन तक यही काम चला, फिर मैं वहाँ से सोचते सोचते रास्ते में पूरे रास्ते सोचते आए फिर उसको लिखी। वो मरी नहीं, मरी नहीं मतलब शाश्वत।
हाँ मतलब उसमें दम था।
हाँ वो यही आई एकदम। एक तो एक ऐसी कविता लिखी जो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने उसमें कुछ भी नहीं, तो अक्सर कविता में एक आध दो शब्द सेट होते हैं बाद में कुछ दिन के बाद, लेकिन उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं किया। और एक बार मैं जैसी लिखी ज्यों की त्यों, और जंगल में देखा एक वृक्ष क्या था, मैं जंगल गया तो वहाँ बैठ गया थोड़ी देर रेस्ट, तो वहाँ चिड़िया लोग जो है वो बहुत उछल कूद कर रही थी पेड़ के नीचे, तो मुझे फिर जो है आकर के मैंने पूरी कविता लिखी। देखा एक वृक्ष के नीचे टूटे गिरे छिन्न सूखे पत्तों पर उछल कूद करती चिड़ियों का अपने ही पैरों की ध्वनियाँ सुन, बहुत सीधा सा। देखा एक वृक्ष के नीचे टूटे गिरे छिन्न सूखे पत्तों पर उछल कूद करती चिड़ियों का अपने ही पैरों की ध्वनियाँ सुनना और कुछ कहकर कुछ चुप रहकर विस्मय से सब ओर देखना, और कुछ कहकर कुछ चुप रहकर विस्मय से सब ओर देखना, लगा जगत का खेल यही है इतना, लगा जगत का खेल यही है इतना, अपनी ही प्रध्वनियों में विस्मय विमुक्त हो खोए रहे। खुद उछलती हैं खुद चुप रह जाती कि कौन उछला कौन किसने किसने तंगी दिया ये, और फिर उसी को
दो पक्षियों को कहते थे पहले भाषा समझते थे तो क्या ये सच में
संभव
है? आप समझते
हैं? नहीं नहीं समझता। मैं ऐसे उनकी भावना समझता हूँ, भाषा नहीं समझता। मैंने यहीं पर देखा, आप आश्चर्य करेंगे, ये इधर घर बनाया चिड़िया ने, वो 4 दिन तक परेशान रही, मैं देखता रहा कि वो रोज आती थी, मैं जब सामायिक में बैठता था तब तब खाली रहता तो रोज आकर के अपने दाने वो रखना, फिर नीचे गिर जाते फिर ले जाती फिर रखती, मैं 2-3 दिन तक देखता रहा, कोई नीचे आके बैठ गया तो उठा भी नहीं पाती, फिर बाहर से लेकर के आती, बड़ी मेहनत। मैंने कहा ये तो इसको बनाना है, और हर हर साल होता है, हर चतुर्मास में बना लेती है वो एक ना एक कोई, तो अब इसको क्या करें। मेरे मन में आया कि इसको एक थोड़ा ऐसा पुट्ठा वगैरह कुछ सपोर्ट लगा देते तो अच्छा रहता, तो फिर वे ब्रह्मचारी जी को मैंने बोला कि आप तो इसमें एक पुट्ठा लगा दें तो अच्छा रहे, तो वो सीढ़ी लाए, उन्होंने पुट्ठा लगाया, पुट्ठा लगाया तो वो चिड़िया बहुत घबराई, वो दोनों चिड़िया जो है वहाँ बैठ के देखती रही कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे घर को तोड़ रहे हैं, आग बन गया है, और फिर वो फुर से उड़ गई। उड़ गई तो मुझे बहुत दुख लगा उसके कि मैंने हाँ कि ये नाहक जो है समझ नहीं पाई, मैं तो ठीक करवा रहा था और ये उड़ गई, अब क्या पता वापस आती कि नहीं आती, इतना विश्वास से उनने बनाया होगा ऐसे करके। लेकिन जब मैं दूसरे दिन सामायिक में बैठा तो देखा मैंने तो एकदम जो है एक चिड़िया ऐसे आई वहाँ से उड़ करके और फौरन यहाँ से उड़ के यहाँ बैठ गई, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ नीचे घुस गई मेरे यहाँ से इधर से घुस घुस करके ऐसे धीरे धीरे, मैंने कहा ये क्या करती है इधर उधर, फिर उधर बैठ गई चींची चींची करने लगी, मुझे लगा। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये वही चिड़िया, दोनों उसने आकर के घर उसमें बनाना शुरू कर दिया, और वो मुझे शायद उन्होंने अपनी सिंपैथी प्रकट करी वो कि ये तो अच्छा हो गया, ये यहाँ पर हम तो भाग गए थे, हमने थोड़ा देखने के लिए आए कि कैसा आया, तो ये तो अच्छा हो गया यहाँ पर, तो वो अपनी शायद प्रसन्नता जाहिर कर रही हूँ। और खूब देर तक जो है मैं सामने बैठे रहा, तो ये उनकी भाषा यही कह रही है कि उनने भावनाओं को समझा,
समझते हैं
पक्षी। एक और चिड़िया के ऊपर ही लिखा था, कल चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे, कल चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे आज भी बनाए हैं, मैं सोचता हूँ कि चिड़िया जब तक रहेंगी घोंसले बनाती है, कल चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे आज भी बनाए हैं, मैं सोचता हूँ कि चिड़िया जब तक रहेंगी घोंसले बनाती रहेंगी, चिड़ियों के लिए और शायद हम सबके लिए। वैसे ये बात मैं चिड़ियों से बिना पूछे लिख रहा हूँ कि चिड़ियों के लिए और हम सब के लिए अतीत अनागत और वर्तमान का, अतीत अनागत और वर्तमान का इतना ही अर्थ है कि हमें हर बार रहने के लिए एक घर बनाना, शायद इससे ज़्यादा हम लाइफ और नहीं जानते। फिर एक दिन पेड़ के नीचे से गुजरा और आंधी पानी बहुत चला, वहीं पर सामायिक भी करी और यहाँ आ रहा था तो उसको भी देखा। आंधी आकर चली जाती है, वृक्ष शोकाकुल शांत खड़े रह जाते हैं। आंधी आकर चली जाती है, वृक्ष शोकाकुल शांत खड़े रह जाते हैं कि उनके बावजूद भी, यानी स्पाइट अपनी जैसे अपन कहते हैं, कि उनके बावजूद भी चिड़ियों के घोंसले टूट कर गिर गए।
वो रक्षा नहीं कर सकते
वृक्ष। आंधी आकर चली जाती है, वृक्ष शोकाकुल शांत खड़े रह जाते हैं कि उनके बावजूद भी चिड़ियों के घोंसले टूट कर गिर गए हैं। क्या आप कोई चिड़िया विश्वास से भरकर नया घोंसला बना पाए? वो इसलिए शायद चुप खड़े हुए हैं कि शायद बना पाए। आत्मा के बारे में बड़ी चर्चा चलती है, आत्मा है कि नहीं, तो मैंने उसकी भी कहना चाहिए मजाक बना दी एक तरह से व्यंग ही कर दिया आत्मा, आत्मा को बहुत चर्चा करने वालों पर, या बहुत बड़ी चर्चा को भी बहुत शॉर्ट में। कल ही उसका पत्र आया है, उसने मुझसे पूछा है कि तुम आत्मा को मानते हो अभी भी? बहुत दिन पहले डिस्कशन हुआ होगा, ऐसा एक इमेज करें अपन। कल ही उसका पत्र आया है, उसने मुझसे पूछा है कि तुम आत्मा को मानते हो अभी भी? मैंने लिख दिया है कि मानता हूँ अपने को और तुम्हें भी, मैंने लिख दिया है कि मानता हूँ अपने को और तुम्हें भी। अस्तित्व की स्वीकृति के लिए इतना ही काफी, हमारा और आपका होना ही होगा। कौन झगड़े में पड़े?
ढंग से बहुत बड़ी बात कहता
है। कौन झगड़े में पड़ेगी आत्मा सत्य? हम तो हैं इतना ऐसे ऐसे ज्यादा और क्या होते।
आप कभी कल पहले से लिखते थे बचपन से?
मैंने 77 से शुरू किया पहली कविता, सबसे पहली कविता मेरी थी कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर में था उसमें। जीवन बीता आशाओं में बीत गई अंधेरी, जब भी उसे मिलना चाहा बढ़ती गई ये दूरी। कल तक उनसे पूछा था कल कब आएगा, आज स्वयं से पूछा पाया कल क्यों आएगा। पल पल घटता गया ये जीवन, पल पल बढ़ती गई पिपाशा, पल दो पल थे जीवन में क्यों उतनी गहरी आशा। ये बहुत पहले फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ। इनको सबसे पहले मैंने बंकिम चंद जी को शुरू किया था, शरद जी, फिर बंकिम जी, फिर उन लोगों ने कहा कि इनको ही पढ़ी। एक और बंगाल की हैं, इन्हीं के साथ का नाम एकदम नहीं आ रहा, बंकिम जी के साथ में वो भी दिखती हैं
लेडी,
हाँ एकदम याद नहीं आ रहा अभी नाम। इन सबको मैंने पूरा, प्रेमचंद को पूरा पढ़ा, जनम जी को पूरा पढ़ा, जितनी हो सकती मतलब उनकी किताबें।
आपको ऑथर सर पोएट्स में आजकल के किनों ने प्रभावित किया
सबसे ज्यादा? बहुत से
वो अग्निपथ आप
बच्चन ने सबसे ज्यादा,
पर उन्होंने तो जैसे ये इस पर बहुत लिखी है रोमांटिक
पोएम,
वो तो पहले की भी रहस्यवाद कवि में
पांचवी बार उनके ऊपर से जब डाल दी गई थी तो उन्हें ऑटो में चखी थी, फिर छोड़ दी। वो भी कब छोड़ी थी? जब अमिताभ जी बीमार थे, यहाँ खबर मिली। मैंने उनका पूरा वो पढ़ा, आप पढ़िएगा क्या बोलूँ क्या याद करूँ। फिर
नीर का निर्माण,
फिर प्रवास की डायरी, बसेरे से दूर, फिर अभी आप अभी लेटेस्ट उनका है 10 द्वार से सोपान तक, चारों वर्ग में
खामोशी कोई उनका नया वो खिलौना
कह देगा कोई आपकी। हाँ वो तो है, कन्हैया लाल सेठिया हैं ये कलकत्ते के, उनका है वो, मैं बहुत रेयर केसेस में सुनाता हूँ। वो एक तरह की बहुत संवेदनशील कविता है।
अग्निपथ मैंने इससे वादा किया आपको सब।
अच्छा ये बच्चन की है,
मुझे अच्छा
सुनाइए प्लीज,
मुझे अच्छा लगता है इसलिए उसको गाते हैं।